औरत का जो मेहर शादी के दिन तय होता है वो मेहर भी शोहर के ऊपर औरत को देना जरूरी है। बेस्ट तो यही है कि लाइफ में बल्कि वेडिंग डे पर ही उसी वक्त मेहर को अदा कर दिया जाए ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो बोझ है वो हमारा खत्म हो जाए, औरत को उसका मेहर दे दिया जाए। लेकिन अगर किसी ने जिंदगी में अपनी बीवी को उसका जो मेहर था उस मेहर को दिया नहीं और पूरी जिंदगी में बीवी ने मेहर को माफ भी नहीं किया, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई कि बीवी ने कहा हो कि मैंने अपना मेहर माफ कर दिया, ये भी उस मरने वाले पर एक कर्ज है। कानून यह है कि वो मेहर की रकम सबसे पहले कफन दफन के इंतजाम के बाद उस मेहर की रकम को निकालकर उसकी बीवी को दे दी जाए, ये कर्ज है जिसका अदा करना जरूरी है। वारिस ये ना कहे कि तुझे वारसे में बहुत कुछ मिलने वाला है, अब ये 300-400 पाउंड का मेहर का क्या रोती है, तुझे तेरा मेहर नहीं मिलेगा, ये गलत है, ये कर्ज है। अगर उसको मेहर नहीं दिया गया और उस औरत ने अपने मेहर को माफ नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में इस मरहूम को पूछोगी, इसको सवाल किया जाएगा, लिहाजा मेहर का अदा करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर लाइफ में उस बीवी ने माफ कर दिया कि मुझे मेहर नहीं चाहिए, तुम मिल गए वही काफी हो, तो ये उस दोनों हस्बैंड वाइफ का मामला है, दोनों राजी तो क्या करे काजी। वरना मामला ये है कि अगर बीवी ने माफ नहीं किया और इसने नहीं दिया तो ऐसी सूरत के अंदर ये एक कर्ज है जो बीवी को अदा करना जरूरी है। एक और बात कि आम मतन ये भी होता है कि हस्बैंड वाइफ शादी हो गई और हस्बैंड शादी के बाद ही सबसे पहला सवाल यही करता है कि तू मेरी मैं तेरा, हम दोनों एक दूसरे के, क्या करेगी तू मेहर को लेकर, चल माफ कर दे। इतना बिचारी पर प्रेशर डालता है वो 200-500 पाउंड के लिए, इतना प्रेशर डालता है कि अब मुझसे क्या मेहर लेती है, मैं तेरा हो, मैंने तेरे लिए जान दे दी, मेहर क्या चीज है, और अपनी मेहर वसूल कर लेता है। तो ये जबरदस्ती करना, औरत से जबरदस्ती मेहर का निकलवा लेना, ये नाजायज है। और अगर जबरदस्ती करके फुसला कर उसने प्रेशर डालकर उससे मेहर को ले लिया, ये हराम माल है और हराम माल कमाने पर उसके ऊपर अजाब आएगा। तो बात चल रही थी कि मैयत का मरहूम का दूसरा हक, पहले कफन दफन का इंतजाम हो, दूसरा कर्जे को अदा किया जाए। अब अगर किसी का बाप दुनिया से चला गया, मां दुनिया से चली गई, बच्चों की जिम्मेदारी है कि हमारे बाप के जो स्टेटमेंट्स है उसको हम चेक कर ले कि कहीं कर्ज तो नहीं है, बाप की जो डायरी है उसको चेक कर ले कहीं किसी का कर्ज तो नहीं बाकी है, बाप की जो रिकॉर्ड बुक्स है उसको चेक कर ले कहीं किसी का कर्ज तो बाकी नहीं है, इसकी फिक्र करे। और जो कर्जदार है उन लोगों को कर्ज अदा कर दिया जाए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ऐसी औलाद भी है जिनको रिकॉर्ड में मालूम पड़ गया या बाप ने जिंदगी में कह दिया था कि मैंने फुला से कर्ज लिया है, फुला को कर्ज देना है, बाप का इंतकाल हो गया, ऐसे बन जाते जैसे हमें पता ही नहीं। बिचारा वो कर्जदार जिसने इसके बाप पर एहसान किया था इंतजार में है, आज पैसे आएंगे कल आएंगे, और बिल आखिर वो दरवाजे पर आता है कि तुम्हारे वालिद को जिंदगी में मैंने कर्ज दिया था, आप मेरा कर्ज वापस कर दीजिए। यह औलाद जानती है कि हां मेरे बाप ने कर्ज लिया था, लेकिन माल की लालच में साफ इनकार कर देते हैं कि हमारे बाप ने तो कभी हमें मेंशन ही नहीं किया, हमारे वालिद ने तो कभी इसका तस्कीरा नहीं किया, आपके पास कोई प्रूफ हो, कोई रिसिप्ट हो तो लेकर आओ, वरना हम तुम्हें नहीं दे सकते। अंदर ही अंदर खुश होते हैं, इसका माल मार लिया, इसका माल हमारे पास आ गया, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे, हराम माल को रखेंगे, हराम माल को वसूल करेंगे, अल्लाह के यहां इसका जवाब देना पड़ेगा। इस बिना पर औलाद का तो फरीजा यह होना चाहिए कि अगर कोई कर्जदार आया और आकर यह कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप को कर्ज दिया था और तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, अगर तहकीक के बाद पता चले बात सच्ची है तो वो औलाद यूं कहे कि देखो मेरे बड़े, देखो मेरे चचा जान, देखो आप मेरे अब्बा के दोस्त है, आपने उन्हें कर्ज दिया, लेकिन हमारे अब्बा जो छोड़कर गए हैं इसमें इतना नहीं है कि हम आपको इमीडिएटली वो सारा का सारा कर्ज अदा कर दे, हम वादा करते हैं धीरे धीरे करके हम अपने अब्बा का जो भी बोझ है उन सबको तुम्हें अदा कर देंगे। ये बाखलाक औलाद की अलामत है। तो ये दूसरा हक है कि मैयत जब दुनिया से चला गया उसके कफन दफन का इंतजाम हो, और दूसरा जितना भी कर्ज है उन सारे कर्जों को अदा कर दिया जाए, कर्जों को अदा कर दिया। अब थर्ड स्टेप यह है कि मैयत ने, मरहूम ने जो विल लिखा है, जो वसीयत की है, जो विल है, उस विल को पढ़ा जाए और विल में जो कुछ लिखा है उसके एतबार से लोगों में तकसीम किया जाए। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना, विल के बारे में हमारे मुल्क का जो कानून है वो कानून और इस्लाम का जो कानून है दोनों बहुत डिफरेंट है। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा मजहब है, हमारी शरीयत है, हमारा दीन है। हमें विल के ऊपर वैसे अमल करना है, वसीयत को इस तरह नाफिज करना है जैसा हमारी शरीयत ने और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया। इस बिना पर विल के बारे में और वसीयत के बारे में इस्लाम का जो कानून है मैं आपको बताता चलो। यहां का मुल्क का कानून तो यही है कि विल में मरहूम जो कुछ भी लिख कर गया है सॉलिसिटर उसे लेता है और वसीयत के मुताबिक जो जो लिखा है उसके मुताबिक पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हमारी मजहब ने विल के लिए और वसीयत के लिए तीन प्रिंसिपल बनाए हैं। मेरे भाइयों गौर से सुनना, तीन प्रिंसिपल्स हैं, इन तीन प्रिंसिपल्स पर अमल करेंगे उसके बाद ही वसीयत को नाफिज किया जाएगा। वसीयत का पहला प्रिंसिपल, पहला उसूल यह है कि हमारे भाई ने, मरहूम ने, वालिद ने, वालिदा ने, जो भी मरहूम हो गए उन्होंने जो वसीयत की है, पहले यह देखो कि ये माल जायज जगह के लिए वसीयत की है या नाजायज जगह के लिए वसीयत की है। अगर वो जायज जगह के लिए वसीयत की गई है तो जरूर उस वसीयत पर अमल किया जाए। लेकिन अगर हमने विल में और वसीयत में यह देखा कि जो वसीयत है वो नाजायज कामों में इस्तेमाल के लिए की गई है, तो फिर हमारी शरीयत हमें इजाजत नहीं देती कि एक ईमान वाले के माल को उसकी मौत के बाद में नाजायज कामों में इस्तेमाल किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर उसने विल में यह लिखा कि मेरे माल से पब बना दिया जाए, मेरे माल से फला जगह जहां पर म्यूजिक और डांस होते हैं उस जगह को और रिनोवेट कर दिया जाए। उसने यह कहा मेरे माल से लोगों के दरमियान में अल्कोहल और शराब को तकसीम किया जाए। यह वसीयत हराम चीज की है, नाजायज चीज की है, ऐसी वसीयत को नाफिज नहीं किया जाएगा। था वो मरहूम का माल, कर गया वो वसीयत, लेकिन कानून इस्लाम यह है कि मरहूम दुनिया से नादानी करके चला गया लेकिन उसके इस माल को नाजायज कामों में तकसीम नहीं किया जाएगा। हां, अगर उसने जायज कामों की वसीयत की, फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है वसीयत में, विल में ये लिखता है कि मेरी जिंदगी में मेरी कितनी नमाजें छूट गई थी और मैं उन नमाजों को पढ़ नहीं सका, अब मेरी मौत का वक्त है, मैं जा रहा हूं, मेरे ऊपर इतनी नमाजें बाकी है, मेरी इन नमाजों का फिदिया दे देना, तो ये जायज वसीयत है। एक नमाज की कीमत 1 pound 25 pence, इस हिसाब से उसकी 6 नमाज दिन के, 5 फर्ज नमाज, 1 वित्र की नमाज, इस हिसाब से उसकी वसीयत को नाफिज किया जाए। उसने यह वसीयत की कि मैं बीमार था, डायबिटीज का शिकार था, डॉक्टर ने रोजा रखने से मना किया था, मेरी बहुत खराब तबीयत थी, मैं वसीयत करता हूं कि मेरे रोजों के बदले में फिदिया दे दिया जाए। यह जायज वसीयत है। एक रोजे का फिदिया 1 pound 25 pence, इसके हिसाब से उसकी वसीयत को नाफिज किया जाए। उसने यह वसीयत की कि मैं माजूर था, मैं हज नहीं कर सका, हज मेरे ऊपर फर्ज था लेकिन जा नहीं सका, ताकत नहीं थी या कोई और मामला था, लिहाजा मेरी तरफ से हज्जे बदल को करा लिया जाए। यह जायज वसीयत है, इस वसीयत को नाफिज किया जाएगा। उसने वसीयत की कि मेरे जाने के बाद मेरे माल में से फला मस्जिद में इतनी रकम दे दी जाए, फला यतीम खाने में इतनी रकम दे दी जाए, फला बेवाओं को स्पॉन्सर कर लिया जाए। यह सब नेकी के काम है, जायज काम है, इन कामों में वसीयत وصیت کو نافذ کیا جائے گا. تو فرسٹ پرنسپل ول کے بارے میں کہ وصیت جائز کاموں کی ہو ناجائز کاموں کی نہ ہو, اگر ناجائز کام ہے تو ایسی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا. سیکنڈ پرنسپل, وصیت کرنے والے نے, ول لکھنے والے نے جو وصیت کی ہے, ہمارا اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کے پورے مال میں سے صرف 1/3 مال میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا. یہ پرنسپل میرے بھائیو یاد رکھنا کہ ول جو بھی اس نے لکھا ہے, اسلامی قانون یہ ہے کہ وصیت جو نافذ کی جائے گی وہ 1/3 مال میں سے. اس کی پوری پراپرٹی کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دو, 2 پارٹ وارثوں کا حق ہے اور 1 پارٹ وصیت ہے جو ول کے اندر استعمال کی جائے گی صرف 1/3 پارٹ میں, اور وہ بنتا ہے 33.33%. یہ ہے وہ وصیت کی مقدار جس میں نافذ کیا جائے گا. اگر اس نے اتنی زیادہ وصیت کر دی ہے کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کا 33.33% اس سے بھی زیادہ وصیت کی ہے تو اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا. 2 حصہ وارثوں کا, 1 حصہ وصیت کا, اس بنا پر صرف 1/3 پارٹ میں وصیت کو نافذ کیا جائے گا. اس بات کو بھی میں ایک ایگزامپل سے کلیئر کرو. فار ایگزامپل, وصیت کرنے والا یہ کہہ کر گیا کہ فلاں یتیم خانے میں میری طرف سے 5,000 pounds دے دینا. وصیت کی اس نے کہ میرے مال میں سے 5,000 pounds فلاں یتیم خانے میں دے دینا. جب اس کی پراپرٹی کو چیک کیا اور اس کے مال کو دیکھا تو ٹوٹل مال اس کے پاس اونلی 9,000 تھا.